समय सहाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचरणमणो मम गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावुर भरत क्षेत्र के समर्थाचार्य भगवान कुमकुम देव द्वारा रचित समय सार परमागम में मोक्ष अधिकार आत्मा मुक्त स्वरूप है और पर्याय में मुक्ति कैसे होवे उसका ज्ञान कराने वाला मोक्ष अधिकार गाथा है 294 9294 पाठ करते हैं पहले। जीवो बंधो यतः छिन्ति सलक्षणे ઘણું સુંદર સ્પષ્ટીકરણ અને ખાસ તો રજની ભાઈ નું હું આભાર માનું કે મને આ ગાથા આપી એટલે મારે એનો વિશેષ પહેલા સ્વાધ્યાય પણ થયો અને આ ગુરુદેવજીના પ્રવચન એક આમ તો સાંભળતા હોઈએ પણ એક જુદી દ્રષ્ટિકોણથી પણ સાંભળવાનો મને પણ એક એવા ભાવ વિશેષ બન્યા એટલે આપનો પણ ખૂબ હું આભાર પણ માની લઉં છું। અને જ્યારે કોઈ વિષય આપવામાં આવે છે કે તમારે આ વિષય પર બોલવાનું છે તે વિષયમાં આપણો ઉપયોગ અંદર વિશેષ વ્યક્ત જાય છે અને કુંદકુંદ આચાર્ય અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે આની અંદર શું કહેવા માગે છે તો જે ગુરુદેવશ્રી જે વારંવાર કહે છે ને કે જો પંચમ કાળમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવી અમૃત રે લાવ્યા છે દીપક ઘટપટાદીને નહીં દીપક પોતાના પ્રકાશક સ્વભાવને પ્રકાશ કરે છે। લાઈટ ચાલુ કરી તો શું જણાયું કે 3-4 વસ્તુઓના નામ આપો લાઈટ ચાલુ કરી 3-4 વસ્તુના નામ આપો તો તરત જ કહીશું મંદિરમાં લાઈટ ચાલુ કરી સવારે 3-4 વસ્તુના નામ આપો તો શું નામ આપીશું પહેલું તો ભગવાન દેવ પછી શાસ્ત્ર જીનવાણી પછી આ બધું જણાવ્યું ને। અરે અંધારું હતું તો એ વખતે તો નહોતું જણાતું ને બધું અને અજવાળું થયું ને તો એ બધા પદાર્થ જળાય ને તો વાસ્તવમાં એ પદાર્થ નહીં, એ જે જે લાઈટનો પ્રકાશિત કરવાનો સ્વભાવ પ્રકાશિત થયો છે. આ સમજાય છે કે નહીં? શ્રીમદજીને શબ્દમાં કહીએ તો ઘટપટ આદિ જાણ તું તેથી તેને માન, જાણનારને માન નહીં કહીએ કેવું જ્ઞાન. આ બધું જણાય છે, આ જણાય છે એને માને, અને આ જાણનાર જે છે એને તું માને નહીં કહીએ કેવું જ્ઞાન. એ એકાંત પર પ્રકાશક જ્ઞાનને પ્રમાણ જ્ઞાન નથી કહેવાતું, મિથ્યા જ્ઞાન કહેવાય છે. ઘણા બધા સ્પષ્ટીકરણ એ તો દ્રષ્ટાંત આપી પછી કહ્યું કે એવી રીતે આત્મા જ્ઞાયક ચેતક, એ આત્મા એ જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં ગે સંબંધનું જે જાણવું થાય છે તો વાસ્તવમાં એ ગેને નથી પ્રકાશનું, આત્માના પર પ્રકાશક એવો સ્વપર પ્રકાશક એવા દ્વિરૂપ પ્રકાશક સ્વભાવને પ્રકાશે છે. દ્વિરૂપ પ્રકાશક એવા પ્રકાશક સ્વભાવનો પ્રકાશક થાય છે. બીજી રીતે કહે તો લઈશું પછી આપણે જ્યારે આવશે ત્યારે તો થોડું આવીશ, એટલે જરાક સ્વપર પ્રકાશક એવા સ્વને પ્રકાશે છે. વાહ, સમજાય છે કે નહીં? અને સમજો કે જે છેલ્લી ત્રણ લીટી આવી ગઈ ને એ આપણે અત્યારે જે પેરેગ્રાફ લેવો છે કે છેલ્લે આવી ને કે ભેદ સંભાવનાનો અભાવ હોવાથી આ રાગ ને જ્ઞાન બંને છે તો જુદા જ, પણ અજ્ઞાની જીવને એ સંબંધના ભેદનું જ્ઞાન નહીં હોવાના કારણે વ્યામોહ વડે, વ્યામોહ માને ભ્રમના કારણે એ જાણે બંને એક હોય, અથવા તો હું રાગી દ્વેષી કસાઈ એમ માને છે. અને આવો વ્યામોહ, એસા વ્યામોહ, એ વ્યામોહને તોડવાનું કોઈ સાધન હોય તો લખે કે પ્રજ્ઞા વડે આ મોહને છેદી શકાય છે. છેલ્લે પ્રજ્ઞા છીણી છે સાધન નથી ને, કે આવા વ્યામોહને સેના વડે તોડી શકાય છે? પ્રજ્ઞા વડે. ને ગુરુદે છે કે પ્રજ્ઞા એટલે અંતર્મુખ વડેલું જે જ્ઞાન છે એ પ્રજ્ઞા છીણી થકી છેદતા બંને જુદા જુદા પડી જાય છે. માને જ્ઞાનમાં રાગ ઘૂસી થોડો ગયો છે, એ તો અત્યંત નિકટતાના કારણે એને એવો ભ્રમ થયો હતો, અને ભ્રમ દૂર થયો. બાકી શું થયું? ભ્રમ દૂર થયો છે ને. જેમ વડોદરા સ્ટેશન આવ્યું, વડોદરા, અને હું સુરત સમજીને ઉતરી ગયો. વડોદરા સ્ટેશન આવીને સુરત સમજીને ઉતરી ગયો ને, તો મારે તો જવું હતું સુરત, અને વડોદરા સ્ટેશન સુરત સમજીને ઉતરી ગયો તો તકલીફમાં તો હું જ મુકાઈશ ને. હવે એમાં એકચ્યુઅલી શું હતું કે વડોદરા ને સુરત સમજીને તો સુરત તો હતું નહીં, મારો માત્ર શું હતો ત્યાં? બ્રહ્મ અંધારામાં મને ખ્યાલ ના આવ્યો અને સુરત સમજીને ઉતરી ગયો ને, મારો બધો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો બધો પ્રોગ્રામ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એમાં જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં રાગ સંબંધીનું યાદ જાણવું થયું, રાગ નથી આવ્યો તો આને એમ માની લીધું કે હું રાગી દ્વેષી તો થયું તો નથી ગાડી કાંઈ એવું, પણ અજ્ઞાની જીવને માત્ર એવો શું થઈ ગયો? ભ્રમ થઈ ગયો. અને જે વડોદરા ઉતરી ગયો એમ રાગ દ્વેષને પોતાનો માનીને એમાં ઉતરી ગયો ત્યાં આગળ, જેના કારણે દુઃખી થાય છે. હા હા, અભી પડતે દૂસરા પેરેગ્રાફ હે ને ટીકા કા, દેખો જો લાસ્ટ મેં જો ઉસકી સમરી થી લાસ્ટ વાલી તીન લાઇન ઇસકે સાથ મેં ઇસકો જોડ કરકે અપન કરતે હૈ સ્પષ્ટ ટીકા કા દૂસરા પેરેગ્રાફ. દેખો 464 પેજ. क्योंकि मैं एक तरफ से मेरा पुण्य का उदय समझता हूँ, क्योंकि मुझे आज जो पैरेग्राफ लेना है ना वो लास्ट वाला प्रवचन रखा ना इसके साथ ही आप पढ़ेंगे लाइन, तो ये जो पैरेग्राफ में लाइन है वो पीछे अलग एंगल से रिपीट होती है, तो मुझे गुरुदेव श्री का एक सपोर्ट मिल गया मुझे, बराबर है ना? देखो क्योंकि जो शब्द आए वो शब्द आप देखना, गुरुदेव जी के प्रवचन में जो शब्द आए थे वो पैरा अलग था, अभी अपन जो पैरा पढ़ते वो अलग है। एक ही टीका में दोनों वर्ड दो समय आया, तो अपन दोनों को पढ़ते भी हैं। देखो यहां प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के आया ना, चेत और गुरुदेव जी के प्रवचन का जो अंश था ना वो लास्ट वाला पैराग्राफ में है। देखो आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, और फिर क्या लिखा है, वेद विज्ञान के अभाव के कारण, भगवती प्रज्ञा के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है, माने अज्ञानी ऐसा मानता है, उन्हें फिर क्या लिखा, प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है। फिर वो टीका में आएंगे, एक जीव का लक्षण बताएंगे, आत्मा का लक्षण, और दूसरा किसका लक्षण, राग का। अपन एक पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो आत्मा और बंध के मतलब कैसे छेदा जा सकता है, तो आत्मा और बंध के नियत स्व लक्षणों की सूक्ष्म अंतसंधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। क्या हमने काम किया, ऐसा हम जानते हैं। फिर उसने नीचे नंबर में पैराग्राफ में आत्मा का लक्षण बताया उन्होंने, अब भी पढ़ते नहीं, आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्व लक्षण चैतन्य है वो पैराग्राफ। फिर दूसरे पैराग्राफ पर अपन आ जाए, क्या लिखा है, अब बंध के स्व लक्षण के संबंध में कहते हैं, एक आत्मा का लक्षण आ गया, दूसरा बंध का लक्षण आ गया, अब दोनों का लक्षण ख्याल में आ गया ना, तो फिर यहां कहते हैं, देखो यहां से अपन टच करते हैं, और जो हाँ बस, और जो रागादिक की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है वे चेत चेतक भाव की अति निकटता के कारण ही है, जो आप गुरुदेव के प्रवचन में चला, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं, जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटादिक पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करते हैं, घटत्वादी को नहीं, इस प्रकार आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले रागादिक आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, रागादिकत्व को नहीं। ये दोनों के काम बता दिए, और फिर ऐसा होने पर भी उन दोनों की अत्यंत निकटता के कारण भेद संभावना का अभाव होने से, अर्थात भेद दिखाई न देने से, अनादि काल से एकत्व का व्यामोह भ्रम है, दोनों के लक्षण अलग अलग है लेकिन भ्रम है, वह व्यामोह प्रज्ञा के द्वारा ही अवश्य छेदा जा सकता है। बनारसी दास जी ने लिखा ना छंद 35 गाथा के संदर्भ में लक्षण की बात आई ना, देख लिखा उन्होंने, जैसे को जन गयो धोबी के सदन तीनम पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रहयो है, धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र, चीने पहिचानत ही त्याग भाव गलहयो है। किरण भाई अपन दोनों साथ में थे यात्रा वगैरह में, और धोबी के यहाँ आपका भी कुर्ता पजामा था, मेरा भी कुर्ता पजामा था, और मैं लेके तो आ गया और आके मैंने पेन भी लिया, किरण भाई एकदम ऐसा तो कैसे कहे, फिर धीरे से कहा कि शैले भाई थोड़ी कुछ गलती हो गई है, आपने जो कुर्ता पहना है वो मेरा है। मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरा है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा है, फिर मात्र होने के चले तो ये काम करो, आप यहाँ थोड़ा देखो तो यहाँ मैंने के लिखा दिखा की समझे ना, मेरे में यहाँ एस इसमें लिख रहा के, तो किरण मैंने कहा खाली देख लो ना थोड़ा, कोई बात नहीं खाली देख लो, जब मैंने के देखा उसी वक्त ये कुर्ता मेरा नहीं है। ज्ञान मात्र से बंदरगाह निरोध सिद्ध होता है, समझ गए ना। माने ज्ञान में मैंने ये माना था कि ये कुर्ता किसका है, मेरा। अब लक्षण जाना, चिन्ह लक्षण जाना कि अरे उन्होंने बताया कि के तो ये मेरा नहीं है। ऐसे यहां आत्मा और राग दोनों के लक्षण बता दिए, और आत्मा थी तैयार जीव पात्र जीव है, दोनों के लक्षण जाना कि ये राग ये तो अशुचिपना विपरीत दुख का कारण अद्रु बंद का कारण, उसमें न ज्ञान का अंश है। बनारसी दास जी ने तो खूब लिखा ना, दुहु माही दौर धूप दो कर्म बंद रूप, दुहु को विनाश मुख मार्ग में देखिए। उसमें क्या लंबा नहीं जाएंगे अपन, लेकिन लोगों को पुण्य का इतना रस है, गुरुदेव ने आज तो मतलब समझो कि क्या कहे, 6 रन से ज्यादा होता नहीं, हम क्या कहे। गुरुदेव ने ये बताया कि लोग पुण्य परिणाम को शुभ भाव को धर्म कहते हैं, शुभ भाव को धर्म कहते हैं। यहाँ तो कहते हैं ये जो जिसे धर्म कहते हैं वो तो शुभ भाव है और विकार है, और उसको तो अलग करना है, वो मेरी चीज नहीं है। लोग जिसे धर्म मानते हैं यहाँ कहते हैं वो आत्मा की चीज ही नहीं, आत्मा का विकार है वो तो। कल बताया ना आंख में मोतिया है, ऐसे वो तो विकार है निकालने लायक। लोग जिसे धर्म मानते हैं, धर्म बात समझ बैठे, लोग जिसे धर्म मानते हैं दया दान पूजा भक्ति व्रत तप शील संयम, जिसे धर्म मानते हैं यहाँ कहते वो तो विकार है, धर्म नहीं है। लोगों को ये बात हजम नहीं होती है तो पूजन की पंक्तियों में भी चेंज करते हैं। 16 कारण पूजन में आता है कि पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान पर का, तो पाप पुण्य सब नाश के, तो पुण्य हजम नहीं होता है तो पुण्य के जगह पुंज कर दिया, पाप पुंज सब नाश के। भाई पुण्य का नाश थोड़ा कैसे किया जा सकता है, तो पाप पुंज सब नाश के। अपनी मति कल्पना में वो बात नहीं बैठे तो जिनवाणी में भी इस प्रकार से चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है, हजम नहीं होती है बात। इसलिए बताए ना गुरुदेव श्री की जो वाणी है ना वज्र जैसी वाणी है, कायर ना काट जा तो कंपवा लागे, जो श्रीमत जी ने लिखा ना, वचना अमृत वितराग ना परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग ना कायर ने प्रतिकूल। आत्मार्थी मुमुक्षु जीव होवे ना, ये शुभ भाव भगवान के दया दान पूजा भक्ति के परिणाम की बात तो छोड़ो, जिस परिणाम से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद होवे वो भी अपराध है, अशुचि तो छोड़ो विष्कुंभ है, तो आत्मार्थी जीव तो डोल उठता है के वो कहते हैं ना, हाँ हाँ कल बताया ना, हयु सत सत धबके ने वज्र वाणी छूटे जे वज्र सुमुक्षु सत्व, अहो मने तो आ बात नहीं खबर रहना चाहिए। अरे गुरुदेव खुद कहते हैं ना भगवान जी, अरे समो शरण में आपदी बातों करता हसे ने, तो दया पाड़वा थी धर्म था वो थोड़ू कहता हसे, ये तो कहते ना पी तो कुंभारपण कहे से, अने पी उमराड़ा ना दृष्टांत आपे से कि पर्युषण आवे वक्त आटला दिवस श्वेतांबरना दिगंबरना आ एवं तो खाँची ने कुंभारपण कहे से कि दया पाड़वा। जयरे आई बड़ी बातों भगवान करता हसे एनी वाणी में ऊन ध्वनि मापती हसे कि आ घटपट आदि ने जे प्रकाश करे से वास्तव में घटपट ने नहीं પોતાના સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવને પ્રકાશિત કરે છે ત્યાં આગળ, ત્યારે ઇન્દ્રો અને ગંધર્વો કેવા નાચી ઉઠતા હશે એમ ગુરુદેવ કરે છે। કેટલી વાતો યાદ આવતી હવે એ ભી કે ગગન મંડલ મેં ગૌવા બિયાની વસુધા દૂધ જમાયા વિરલા રેસો માખન પાયા જગત છાંચ ભરમાયા. એ તો માખણ થા અને જગત ને તો છાંચ પુણ્યમાં ધર્મમાં નો. હવે એમ કહે છે કે રાગ ખરેખર રાગ સંબંધ ના જ્ઞાન નું જ્ઞાન થાય છે. આત્મા રાગ ને નથી પ્રકાશતો, પણ એ રાગ ને પ્રકાશે છે. વાસ્તવમાં એ રાગ સંબંધ ના રાગ ને પ્રકાશિત કરવા વાળા પોતાના પર પ્રકાશક સ્વભાવ ને પ્રકાશિત કરે છે, દ્વિરૂપતા ને પ્રકાશિત કરે છે. ગગન મંડલ મેં અદબિચ કુવા વહા હે અમી કા વાસા સુગરા હોય સો ભર ભર પીવે નગુરા જાવે પ્યાસા. અભી યે લેતે હૈ પણ પહેલે નહીં તો યે રહ જાયેગા. યે પહેલે કિતાબ બહોત બઢિયા હૈ, દેખે અપન ક્યા કહેતે હૈ. મેને પલ્લી બતાયા થા કે છે આઠ વ્યાખ્યાન મેં બહુ તકલીફ હોતી હૈ. લોકલ જો વ્યાખ્યાન હોય તો ઉસમે એક એક પૂરા અપન રસ લે કરકે સ્કિપ નહીં કરના પડતા હૈ કુછ ભી. અભી તો યહાં કે એસા હી કરના પડતા હૈ, નહીં તો એક ફિર ગાથા અધૂરી રહ જાયેગી. आत्मा और बंध देखना, जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा. चेत्य चेतक का अर्थ एक ये भी बताया ना, चेत्य चेतक. चेत्य माने ज्ञेय और चेतक माने ज्ञायक. जो अपने प्रसिद्ध जो वर्ड है ना गे ज्ञायक, गे करते ना जणावा योग्य, जणावा योग्य ज्ञेय अने जाणनार ज्ञायक. બાર બાર ગુંતાય ના ગુરુજી ને રાગ જણાવા યોગ્ય અને આ આત્મા સે જાણનાર જ્ઞે જ્ઞાયક બરાબર છે ને. અથવા ચેત્ય ચેત્ય ચેતક ગુરુજી ને વાહ એ ભી ક્યા રાગ તે ચેત્ય સે. ચેત્ય સે એટલે કે જ્ઞે સે. રાગ તે ચેત્ય સે. ચેત્ય સે એટલે જ્ઞેશ છે. અને હું જ્ઞાયક, જ્ઞાયક એટલે જાણનાર છું એટલે ચેતક છું. બંને વસ્તુ કેવી છે? અલગ અલગ. અબ દેખના, આત્મા ઓર બંધ જો કિ ચેત્ય ચેતક ભાવ કે દ્વારા અત્યંત નિકટતા કે કારણ એક જૈસે હો રહે હૈં. અત્યંત નિકટતા શબ્દ લિખા હૈ. ઓર મેં અભી ગ્રંથ નહીં ખુલવાતા હું. 31 નંબર કી જો ગાથા હૈ, 31 ગાથા, ઉસમે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય ઓર ભાવેન્દ્રિય કે વિષય. ઉસમે જો ભાવેન્દ્રિય કે વિષય કી બાત આઈ ના, ગ્રાહ્ય ગ્રાહ્ય સંબંધ કી નિકટતા, તીન શબ્દ આતે હૈ, ગે જ્ઞાયક, ચેત્ય ચેતક ઓર ગ્રાહ્ય ગ્રાહક. ગ્રાહક માને જ્ઞાયક અને ગ્રાહ્ય માને કે ભાવેન્દ્રિય કે વિષય પૂરા જગત. તો વહા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ ને ગ્રાહ્ય ગ્રાહક મે વહા લિખા કે અત્યંત નિકટતા શબ્દ ની પ્રયોગ કિયા હૈ. ગ્રાહ્ય ગ્રાહ્ય સંબંધ કી નિકટતા માને જગત કે પદાર્થ બહાર કે જણાવા યોગ્ય અને આત્મા જાણનાર, જાણનાર અને જણાવા યોગ્ય બરાબર છે ને. જાણવાની જણાવ તો ત્યાં નિકટતા અને યહાં જો શબ્દ ડાલા હે ઓ અત્યંત નિકટતા. એક શબ્દ અત્યંત નિકટતા. ક્યો અત્યંત નિકટતા? તો ગુરુદેવ ને કિતના ગુંતા હે અત્યંત નિકટતા. ક્યો ક્યો નિકટતા? કે દોનો કા રાગ જિસ સમય હુઆ ઉસી સમય જ્ઞાન હુઆ. કલ બતાયા થા ના, આપ આન્સર દેના કે જો મોતિયા બિંદુ હુઆ, મોતિયા ચશ્મા ઓર મોતિયા દોનો મે સે અત્યંત નિકટ કોણ હૈ? મોતિયા. બુખાર આયા, બુખાર શરીર, બુખાર ઓર એ કુર્તા, તો અત્યંત નિકટ કોણ હૈ? બુખાર. જહાં શરીર હૈ, સમજના, જહાં શરીર હૈ વહાં હી બુખાર હૈ ઓર જહાં બુખાર હૈ વહાં હી શરીર હૈ. કપડા તો અલગ હૈ, જહાં બુખાર હૈ વહાં શરીર હૈ, જહાં શરીર હૈ વહાં બુખાર હૈ, લેકિન શરીર ઓર બુખાર દોનો અલગ અલગ હૈ. समझ में आती है ना बात? ऐसे जहां आत्मा है वहां ही राग है, और जहां राग है वहां ही आत्मा है। क्षेत्र गुरुदेव ने बुलाया, समझना, काल क्षेत्र और भाव, पंडित जी साहब तीन लिया, काल क्षेत्र और भाव अत्यंत निकटता है ना, समझना। अब ये बता रहे हैं कि दोनों का क्षेत्र एक है, समझना, राग, समझना, राग ज्ञान तो आत्मा में होता है, आप आंसर देना, ज्ञान तो आत्मा में होता है और राग शरीर में होता है, ज्ञान आत्मा में होता है और राग शरीर में होता है, नितिन भाई ठीक है? अब करें, जहां ज्ञान होता है वहां राग होता है, क्षेत्र एक, और जिस समय यहां राग हुआ इसी समय यहां क्या हो गया, ज्ञान। और राग का काल और ज्ञान का काल, दोनों का काल सेम, क्षेत्र भी एक, क्षेत्र समय भी एक, लेकिन दोनों के भाव भिन्न है, भाव भिन्न है, भाव अत्यंत भिन्न है। और अत्यंत निकट शब्द इसलिए डाला, अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट होने के बावजूद भी अत्यंत भिन्न है। हाँ, वो बार बार आएगी, आएगी, आएगी। ये तो है ना मुमुक्षु जीवों की जो ये भूख है, कई 12 बजे 1 बजे 2 बजे ये बात मिलती है ना, तो कोई को किसी को भोजन याद नहीं आता है। ये तो एक व्यवस्था के रूप में रखना पड़ता है,
बाकी से भोजन से राग पैदा कर रहा है
और राग से आत्मा भिन्न है, यहाँ तो ये बात चल रही है ना, समझो। भोजन तो बहुत दूर की चीज हो गई, समझे ना, भोजन निकट में है और राग अत्यंत निकट है। और जब ना पंडित जी साहब क्या है ना संजीव जी के, महादुख संकट निकट है, राग और ज्ञान दोनों का काल एक, जब यहाँ राग हुआ उसी समय ज्ञान हुआ, और जहां राग है वहां ज्ञान है, लेकिन दोनों है अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न होने के बावजूद भी अज्ञानी जीव दोनों को अभिप्राय में क्या मानता है, एक में एक मानता है, तो कहते उसे महादुख संकट निकट है, क्योंकि दोनों में एकपना मानना वो कौन सा पाप में, कौन सा वाला पाप है, मिथ्यात्व का पाप है ना। तू तो चेतन तत्व है और वो आश्रय तत्व है, और तूने मैं ज्ञान दर्शन वाला मानने की जगह मैं रागी द्वेषी क्रोधी माना, ऐसा माना ना, तो 7 तत्व संबंधी भूल हो गई, मिथ्यात्व का दोष हो गया, और मिथ्यात्व के फल में नरक में एक इंद्रिय निगोद में चला जाएगा। गुरुदेव श्री कहते हैं, गुरुदेव श्री लोग कहते ना कि भाई राग को अपना मानना, भाई साहब थोड़ी स्थूल थोड़ी बात करना, भाई ये मकान मेरा है, किरण भाई आपने जो घड़ी पहनी है हिमांशु भाई, उस घड़ी को मैं मेरी मानूं, नहीं नहीं घड़ी मेरी है, मेरी है, तो मुझे कोई व्याख्यान करने के लिए बैठने देगा, नहीं बैठने, चोर है वो तो, दूसरे की पदार्थ को अपना, ये घड़ी को मैं मेरी मानू तो रजनी भाई, इसको मैं मेरी मानू तो भाई तेजानी भाई, इसको मैं मेरी मानू तो बोलो चोर की साहूकार, चोर की साहूकार। बनारसी दास जी कहते हैं सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहूकार, अपनी सत्ता तो मात्र शुद्धातम है, मेरा नाम मात्र जानना, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, वो सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहूकार, और सत्ता ते निकसे गए और कि एक ये संबंध, ये संबंध ये जानावा योग्य और मैं जानने वाला, पहले यहां तो थोड़ा ले फिर राग में आएगी फिर अंदर में आएंगे जितना होगा उतना, कि ये जो है पदार्थ इस संबंध का यहाँ ज्ञान हुआ तो मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ये पदार्थ मेरे में आया नहीं, तो आपकी घड़ी को मैंने मेरी मानी तो जगत में लोग कहेंगे तो चोर है, लेकिन ये घड़ी ये कुर्ता ये मेरा, प्रदीप भाई नानी चोरी कहवा के मोटी चोरी कहवा है, जिसके लिए गुरुदेव जी को कहते थे ગુરુદેવ શ્રી, આપ તો આ કાકડીના ચોરને ફાંસીની સજાની વાત કરો છો સંજીવજી, નહીં આ સમજ મેં સુનો કે આપ ये घड़ी को मैंने मेरी मानी, ये कुर्ते को मैंने मेरा माना, यहाँ से जब मैं रिटर्न होऊँ तो जो जो गांव में मेरा घर है उसी घर में जाऊँ, पड़ोस के घर में नहीं जाऊँगा, जिसको मैंने मेरा घर वहाँ जाऊँ तो मैं चोर की साहूकार, ये ककड़ी की चोरी की बड़ी चोरी। कोई किसी खेत में से किसी ने ककड़ी ले ली, ककड़ी ले ली और उसको फिर फांसी की सजा दे दी, तो लोग कहेंगे कि भाई कम से कम न्याय तो अच्छा तो होना चाहिए ना, एक मात्र खेत में से ककड़ी ले ली उसमें आप फांसी की सजा देते हैं, कोई न्याय नहीं है। बड़ा अपराध होवे तो बड़ी सजा होवे तो ठीक है। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई ये मकान को पुण्य के उदय से मेरे पास में आया, मेरे में ना मान लिया, दूसरी को तो मेरा नहीं माना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पैसा। कल आया था ना कौन सी गाथा, ओ स्वस्वामी खंखेरी नाथी ने 191 की कौन सी गाथा थी, तो उसको पुण्य के उदय से मेरे पास आया, वो मेरे मैंने मान लिया, उसमें क्या, उसमें आप बता रहे हैं कि निगोद में जाएंगे, नरक में जाएंगे, मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। मेरी दुकान को मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री को मेरी फैक्ट्री, मैंने मैंने मेरे बाहुबल से पूरा खड़ा किया, जीरो में से हीरो में ऐसे नहीं हो गया हूं, रात दिन नहीं देखा है तब आज 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 हम यहां से यहां पहुंच गए हैं। कहां से कहां पहुंच गए, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान पहुंच गए। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो क्या ना क्या पहुंची गया, पर क्या ना क्या पहुंची जैसे पाछा तहते चय थावर तंदरे, क्योंकि साथ में मिथ्या को लेके गए। और ये भगवती प्रज्ञा डालने वाले यहां से जहां पहुंच गए ना, फिर उनको नीचे आने वाला काम नहीं है, जिसे प्रवचन सार में कहते हैं व्यय बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का व्यय। बहुत सारी बातें हैं, तो ये कहते हैं कि तू जो ये मानता है कि मेरी मकान, मेरा मोबाइल, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री, मेरी ऑफिस, मैंने सब खड़ा किया, तो ये जो तू पराई चीज को अपनी मान रहा है ना, तो मिथ्या तो ये सबसे बड़ा पाप है, और उसके फल में जीव नरक, एकेंद्रिय, निबोध वगैरह में चला जाता है। तो ककड़ी के चोर को फांसी की सजा नहीं है, चोरी बड़ी है, बड़ी चोरी है और उसका अपराध का फल भी बड़ा मिलता है। तू जिसे ककड़ी की चोरी मानता है, वास्तव में तू गलती ये कर रहा है कि ये चोरी छोटी चोरी मान रहा है, वास्तव में छोटी चोरी नहीं है, बड़ी चोरी है। क्योंकि अभिप्राय में जिसने एक पदार्थ को अपना माना ना, ये इसको एक को अपना माना और ज्ञायक को अपना नहीं माना है, तो अभिप्राय में अनंत पदार्थों की तृष्णा पड़ी है। टोडर मजी साहब ने बताया आत्मानुशासन के आधार से, तो सुनना जरा ध्यान से थोड़ा, कि दोनों का क्षेत्र और काल एक है, लेकिन दोनों का भाव कैसा है, भिन्न है। अज्ञानी जीव को ये दोनों की भिन्नता का ज्ञान नहीं है। जैसे कल भाई साहब ने बताया ना, जो दर्पण के सामने चिड़िया होती है ना, क्या करती है, चोंच मारती है ना। अपन ऐसा करते हैं माथा, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उस संबंध का भेद ज्ञान है, उस संबंध का। और चिड़िया को उस संबंध का भेद ज्ञान, वो ये समझती है कि अंदर क्या है, चिड़िया है, इसलिए बेचारी दुखी होती है। और हम चिड़िया तो बेचारी दुखी होती है ना नितिन भाई, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है दर्पण का। और हमें तो ज्ञान है, इसलिए हम सुखी है। अरे कहते हैं यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, वो पौद्गलिक दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ चैतन्य दर्पण, ज्ञान दर्पण की हम बात कर रहे हैं। जैसे वो पौद्गलिक दर्पण में वो चिड़िया, उसमें कोई अंदर दूसरी चिड़िया नहीं है, लेकिन उसको भ्रम हो गया कि अंदर एक चिड़िया है, व्यामोह, तो दुखी हो रही है। इसी प्रकार ये ज्ञान की स्वच्छता में, ज्ञान का सही जानना देखना स्वभाव है, और ये उसी समय राग हुआ, यहाँ ज्ञान हुआ, यहाँ राग हुआ, तो ये ज्ञान की स्वच्छता में राग संबंध का ज्ञान हुआ, ज्ञान में राग नहीं हुआ है। जैसे वो दर्पण में कोई चिड़िया नहीं है, चिड़िया का मात्र क्या है, ओनली भ्रम, ऐसे ज्ञान की स्वच्छता में राग संबंध का जानना हुआ है, ज्ञान राग रूप नहीं हुआ है और राग ज्ञान रूप नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान रूप रहा है, राग राग रूप रहा है, लेकिन अज्ञानी जीव को इन दोनों के भिन्नता का ज्ञान नहीं होने के कारण ज्ञान की स्वच्छता में ये गे संबंध का जानना हुआ तो अपने को ऐसा मान लेता है कि मैं रागी, मैं द्वेषी। इसी प्रकार से पुण्य के उदय में जो मिला ना, जो गुरुदेव कहते हैं हूं पैसा वाड़ो, हूं बाईड़ी वाड़ो, छोकरा वाड़ो, हूं काड़ो, हूं धोड़ो, हूं मनुष्य, ज्ञान में कहां राग प्रवेश। ज्ञान में अगर राग प्रवेश हो जाए तो आश्रव तत्व और आत्म तत्व दो अलग नहीं रहेगा भाई। और ये मकान दुकान वगैरह है ना, वो अजीव तत्व है। तो ज्ञान में तो उस संबंध का जानना हुआ, वो पदार्थ ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान यहां से खसकर खिसक करके वहां नहीं गया। एक पंक्ति आती है ना, बहुत अच्छी पंक्ति है, टाइम तो थोड़ा ले लेते हैं फिर शाम को लेंगे नहीं। चैतन्य के दर्पण में, कौन सा दर्पण सुनील भाई, चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में। सामने कौन सा आलय है, सामने बिल्कुल कौन सा आलय है, भोजनालय। ऊपर सबसे ऊपर सिद्धालय, और ये आनंद का आलय। भोजनालय में भोजन मिलता है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलते हैं, और यहाँ कहते हैं मैं किसका आलय हूँ, आनंद का हूँ। ये चैतन्य दर्पण आनंद का आलय है। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, ऐसा जिनवर समझाती। मेरे में क्या है, ऑपरेशन किया जाए तो क्या मिलेगा इसमें से, ज्ञान ही ज्ञान। रामचंद्र जी जब छोटे थे ना, तब किसके लिए जीत पकड़ी थी माता के साथ, मुझे क्या चाहिए, चांदा मामा चाहिए। अब चांदा मामा वहां से लाए कैसे, तो माँ ने क्या किया, बाबू भाई एक थाली में पानी भर दिया, पानी शांत हो गया तो उसमें क्या दिखा, चंद्रमा। चंद्रमा था वहां था, और अंदर हाथ डाले तो क्या निकलेगा, वहां क्या है, पानी। ऐसे एक ज्ञान में समझना, राग यहाँ ज्ञान, तो यहाँ हाथ डाले, हाथ माने ज्ञान अंदर में देखने के लिए जाए तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ज्ञान ही है। जैसे मटेरियल तो पानी ही है, वहां चांदा मामा थोड़ा है, ऐसे ज्ञान में तो ज्ञान ही है। ये बाहर के जो पदार्थ हैं वो मेरे में प्रविष्ट हो ही नहीं सकते, हुए ही नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव भेद संभावना के अभाव ने के कारण जैसे वो बालक ये समझता है कि यहाँ चांदा मामा है, ऐसे ये समझता है कि मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरे कस्टमर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, क्या बात करे। कुछ लोग तो ऐसे लोभी होते हैं, वो दुकान पर ऐसा भी लिखते हैं, ग्राहक मेरा देवता, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता। और कुछ लोग ऐसे ना धंधे वाले, मार्केटिंग करने वाले, जो उनके काउंटर पर ऐसा लिखते हैं, हाँ ग्राहक तो राजा होता है और राजा कभी भाव नहीं करता। धंधे करने वाले चीटिंग कैसा करते हैं, माने उसको ऐसा नशा चढ़ जाता है ना, वो पढ़ता है ग्राहक तो राजा होता है। यहाँ त्रिलोकी नाथ जिनेंद्र भगवान के, तू जीव राजा है, तू चैतन्य चक्रवर्ती राजा राजा है, उसका इसको भरोसा नहीं होता है। जो बिल्कुल रियल बात कह रहे हैं, रियल ट्रुथ कह रहे हैं, उनके पर भरोसा नहीं है। और वो जो ठगने के लिए आपको ये कहता है कि ग्राहक तो राजा होता है, और राजा कभी भाव नहीं करता है तो उसको बात गलत बात बैठ जाती है। ये मोह का नशा है। चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में, जैसे वहां पानी ही पानी था ना, ऐसे मेरे में क्या है बाबू भाई, आनंद ही आनंद है। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद, वो आनंद के कंद, तो आनंद कंद पर्याय में आया कहां से, कि मैं ज्ञान आनंद स्वभाव हूं, वहां से आया। बस ज्ञान ही बस ज्ञान है ऐसा कौन जिनवर समझाते, निज ज्ञान में बस ज्ञान है जो सूर्य रश्मि खान, उपयोग में उपयोग है क्रोधादि के दरम्यान। क्या कह रहे हैं, निज ज्ञान में बस ज्ञान है क्या, जो सूर्य रश्मि खान, सूर्य जो होता है ना, सूर्य उसमें से किरण काय की निकलती है, प्रकाश की अंधकार की, प्रकाश की निकलेगी ना, क्योंकि वो क्या है सूर्य, तो सूर्य में से प्रकाश की किरण निकलती है। ऐसे मैं चैतन्य सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य, तो मेरे में से मात्र ज्ञान ही निकलता है, राग नहीं निकलता है मेरे में से, कषाय नहीं निकलती है। निज ज्ञान में बस ज्ञान है जो सूर्य रश्मि खान, अब उपयोग में उपयोग है क्रोधादि के दरमियान। क्रोधादि जिस वक्त राग हो रहा है, इस वक्त यहाँ ज्ञान हो रहा है ना, तो ज्ञान राग रूप नहीं, राग ज्ञान रूप नहीं हुआ, अब क्या करना, तो कहते हैं देखो, ऐसा भेद विज्ञान द्वारा जब निर्णय हो जाए। प्रज्ञा श्रेणी, भेद विज्ञान माने क्या, किसके द्वारा इसका निर्णय होता है, नितिन भाई दया दान पूजा भक्ति, कितने मंदिर बनाए, कितने विधान पढ़ाए, कितने को सम्य शिखर ले जाए, बोलो क्या करे, तो कहते मात्र एक ही साधन है भेद विज्ञान तो सिद्धा। ऐसा भेद विज्ञान द्वारा जब निर्णय हो जाए तो क्या हो, तब स्वानुभूति में दिव्य दर्शन हो जाए। तो स्वानुभूति होती है ना, तो जो अंदर में दिव्य तत्व होता है उसका दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। निज ज्ञान में परग्नेय की दुर्गंध है कहाँ, ये तो अज्ञान के कारण मान रहा है, निज ज्ञान की सुगंध में बस ज्ञानी नहा करे। वाह, ज्ञानी क्या में स्नान करते हैं, ज्ञानी तो ज्ञान और आनंद में स्नान करते हैं, और अज्ञानी राग द्वेष की कीचड़ में पड़ा है, जैसे वो भूंड वगैरह होते ना, क्या बोलते हैं सुअर, क्या बोलते हैं, वो गंदगी में पड़े रहते हैं, अज्ञानी राग द्वेष की गंदगी में पड़ा है, और ज्ञानी तो निरंतर ज्ञान धारा में स्नान करते हैं। निज ज्ञान में परग्नेय की दुर्गंध है कहाँ, निज ज्ञान की सुगंध में बस ज्ञानी ना करे। अब सुनना, अभिनंदन अभिवादन, अभिनंदन अभिवादन, अभिनंदन अभिवादन करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, अभिनंदन करने के लिए उल्लास भाई कितने व्यक्ति चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए ना, बराबर, एक अभिनंदन करने वाला और एक अभिनंदन लेने वाला, यहाँ अलग बात है। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने द्वारा, जैसे मैं कहता हूँ कोई फंक्शन हो ना, यहाँ कोई फंक्शन हो, अभिनंदन समारोह रखा हो ना और प्रोग्राम पूरा हो जाए ना, बाकी जो सब मालाएं होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना लेकर के खुद ही पहन लेते हैं, उनको भी सब देखते हैं ना, तो ऐसा प्रोग्राम पूरा हो जाए मैंने खुद ही खुद पहन लेते हैं, खुद ही खुद पहन लेते हैं ना, ऐसे यहाँ यही कह रहे हैं, यही कहते हैं खुद की पर्याय खुद के गले में वरमाला डाल दे, आपकी पर्याय मेरे में नहीं, मेरी पर्याय आपके में नहीं। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता होता ना, तो हमारे वितरागी संतों को इतनी करुणा होती है कि सबको साथ में लेके चले। 32वें नंबर में क्लश में कहे ना, हे जगत के जीवो इस चैतन्य सिंधु में स्नान करो, नहीं तो मारिश का जीव क्यों रह जाता, आदिनाथ भगवान साथ में ले जाते ना। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से वाह कतक फल डालना। पंडित जी साहब किसको कतक फल डालना बताया ना, 11वें नंबर की गाथा में पानी गंदा है तो कतक फल वहां लिखा अपने हाथ से डाला हुआ कतक फल। इसी प्रकार से वहां लिखा ना 11वें नंबर की गाथा, ये पानी और कीचड़ दोनों को अलग करना है ना, तो ऐसे यहाँ ज्ञान और राग को अलग करना व्यवहार से विमोहित हृदय वालों को लिखा, तो कैसे कि कतक फल के माने भगवती प्रज्ञा किसको डालना, अपने को ही अपने अंदर में भेद ज्ञान करना है, इसलिए लिखता है अपने ही हाथों से स्वयंवर हो जाए, अपने ही हाथों से स्वयं हो जाए माने किसी की कृपा से हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमने ऐसे देखे तो नहीं है लेकिन बाबू भाई वगैरह ने हमें बताया है कि ऐसे भी थे कि वो ऐसा काम, मतलब कहते थे कि देखो आपको सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो फलाने व्यक्ति है उनके पास जाओ तो वो सबको सम्यक दर्शन देते हैं, जाते थे और सबको बिठा देते, फिर ऐसे चपटी बजाए के जब आपको सम्यक दर्शन हो गया, आपको सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ कहते हैं कोई सम्यक दर्शन दे नहीं सकता है, अपने ही हाथों से अपना स्वयंवर हो जाए, और ये बता भी रहे हैं कि स्वयंवर कैसे करना, क्या करना, वो प्रक्रिया भी बता रहे हैं, अज्ञान क्या है वो भी बता रहे हैं, रोग भी बता रहे हैं, और फिर डायग्नोसिस करके मेडिसिन भी दे रहे हैं कि ये मेडिसिन है और मेडिसिन तेरे पास ही है, कोई बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सवाल मात्र इतनी है कि तुझे इस अपना कल्याण करने की भूख कितनी है। वास्तव में भूख लगनी चाहिए संसार लिखने, पूज्य बैन श्री का बोल है, एक निकाल देना क्या है निकलेगा ठीक है, 216 आपको ऐसा भूल है कि बेंसरी का, फिर अपन पूरा देख लेते हैं, बहुत अच्छा भूल है, एक ही लाइन पढ़ेंगे पूरा, बाकी तो आप पढ़ना 216 नंबर बी में चले जाओ आप, हाँ 216 निकालो, 216 ये लो पेज पर पे, आपको साथ में बोलना पड़ेगा वो लाइन पेन लीटी, क्या लिखा है, जो वास्तव में संसार से थक गया है, फिर क्या लिखा है, उसी को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इतना बड़ा इसमें गुजराती माँ कहिए ना, जेने खरे खर संसार थी थाक लागे हो एने सम्यक दर्शन थाय से, पाप ना उदय माँ तो बधाने थाक लागे से, ताव जल्दी उतरी जाए तो सारू, इनकम टैक्स वाला जल्दी चला जाए तो सारू, माने पाप के उदय में तो सबको थकान लगती है लेकिन पुण्य के उदय में तो किसने देखा स्वर्ग किसके देखा नरक, खाओ पियो मजा करो, यहाँ कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों संसार के परिणाम है, और संसार से जिससे वास्तव में थकान लगे, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम से जिसे थकान लगे, जो सोगानी जी साहब की स्थिति थी, उनको जब पूछा गया ना आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसके पहले आपकी स्थिति क्या थी, तो उन्होंने बताया कि एक जो विकल्प था, विकल्प और विकल्प मुझे इतना तकलीफदायक लगता था कि या तो विकल्प छूट जाए, राग छूट जाए या देह छूट जाए, तीसरी कोई स्थिति होने वाली नहीं थी। और उग्र पुरुषार्थ था, आयु कर्म ना उदय था, तो देह रह गया और विकल्प टूट करके पक्षातिक्रांत निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो गए। इसलिए पहले बता रहे हैं कि वास्तव में संसार से थक गया है, लगा है सच्चे अर्थ में थकान लगी है, तो बिल्कुल औषधि तो रेडी ही है। इसलिए पहले और रोजाना कहते हैं कि स्वाध्याय, गुरुदेव ने जिस दृष्टिकोण से स्वाध्याय करने कहा है, स्वाध्याय करेगा तो संसार से थकान भी लगेगी और ये भगवान आत्मा पसंद आएगा और तेरा काम होएगा और होएगा। कोई ज्योतिष को कैरोट के पास पत्ता उपाड़ने की जरूरत नहीं है कि 100 रुपये आके पोपट के पास पत्ता उठाता है कि मेरा फ्यूचर देखो, ये संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य त्रियंश के पास पत्ता उठाता है।
आपकी पचास मिनट तो है।
हाँ हाँ वो है।